यह प्रवचन पुनर कृष्ण प्रभु के द्वारा मेरा और राधा गिरधारी मंदिर में
प्रथम श्लोक क्रमांक 16 भूतस्तद्य विचारेण
नवम स्कंद जय 16वां श्लोक
कन्या नाम सा भव
कन्येला नाम सा भवत
लोक्य मनो प्राह
तामि लोक्य मनो प्राह
नाति तुष्ट मना गुरु
नाति तुष्ट मना गुरु
मोतुस्तद व्यभिचारेण
मोतुस्तद व्यभिचारेण
कन्येला नाम सा भव
कन्येला नाम सा भव
तामि लोक्य मनो
निंदनीय कर्म से
कन्या
पुत्री नाम से
सा
अभवत
उत्पन्न हुई
उसको
विलोक्य
देख कर
मनो महाराज
प्राह
बोले
नहीं
अति तुष्ट मना
अत्यधिक तुष्ट
गुरु
अपने गुरु से
अनुवाद एवं तात्पर्य इस कृष्ण कृपा श्रीमति चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की
जय।
अनुवाद मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विकट होने से इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, चूंकि मनु की कोई संतान न थी, अतएव वे संतान के जन्म होने पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा, किंतु बाद में वे पुत्र के बजाय पुत्री को देखकर अत्यधिक तुष्ट नहीं थे, चूंकि वे निसंतान थे। अतएव इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष क्षणिक था। बस जो लाइन में दिखाने का नित्यम भागवत से प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रतिदिन भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस काम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में भगवान के और उनके भक्तों के प्रिय चरित्र हैं, जिसका श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्र करता है। आप सभी वैष्णव, हम सभी भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को जान चुके हैं गुरु वैष्णव के पास से, और उस संबंध में प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे सरल, सुगम एवं श्रेष्ठ साधना है हरि कथा श्रवण, भागवत श्रवण, जो पंच महासाधन में महाप्रभु जी ने इसको रखा है। आप वैष्णव जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है और अन्य 17 को पुराण, और उसके बाद भी कुछ उपपुराण है जो व्यास जी के द्वारा ही मान्य है। अन्य पुराण और भागवत पुराण में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि स्पष्ट अंतर है। अन्य पुराणों में मुख्य विषय वस्तु या लक्षण 5 होते हैं और इसमें 10 है। जिसमें 10 लक्षण लक्षित हो उसे महापुराण कहते हैं। और पुराण शब्द की परिभाषा भी हमारे वैदिक मनीषियों ने दी है, पुरा अति पुरातन होते हुए भी नया लगे सुनने पर, पढ़ने पर, समझने पर। पुरा अति नयति एक अर्थ, ऐसे तो 5000 पुराण भी बताए गए हैं, हमको यही अर्थ पसंद पड़ता है। यहाँ पुरातन इतिहास है तथा तो जब भी सुनो तब आनंद ही देता है और नित्य नवीन रस प्रदान करता है, इसीलिए पुराण है। तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय, द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका वर्णन है। ऐसे तो प्रथम श्लोक में ही कह दिया गया वहां पर सुखदेव जी के द्वारा कि भागवत में 10 लक्षण है, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उदय मनवंतर ईशान कथा मुक्ति निरोधाश्रय है। भागवत के 12 स्कंदों में ये 10 लक्षण लक्षित होते हैं, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। और 10 लक्षणों में एक लक्षण है ईशान कथा। ये जो नवम स्कंद यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है हमारे मंदिर में, ये भागवत के ईशान कथा के लक्षण के अंतर्गत आता है। ईशान कथा का क्या तात्पर्य है तो उसी जगह सुखदेव जी ने 10:2-10:5 बता रहा है। तो कहते हैं कि अवतारानुचरितम् हरे यस्यानुवर्तिना सताम अथवा पुंसा पाठ भेद है वहां पर, पुंसाम ईशान कथा प्रोक्तो नाना व्याख्यान ब्रीहितम्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ईशान कथा का तात्पर्य है हरे अवतार चरितम, इसमें भगवान श्री हरि के अवतार का चरित्र हो, और हरे यस्य अनुवर्तिनः भगवान के शुद्ध वैष्णव राजर्षि, राजा या ऋषि या दोनों जो भी है, भक्त वैष्णव अनुवर्तिनः जो भगवान के बताए हुए धर्म पर, पथ पर या भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं, उसकी जो चरित्र है या कथा है उसे ईशान कथा कहते हैं। और ये नाना ख्यान इतिहास से भरा है। तो भगवान के शुद्ध भक्त के परम चरित्र जो भगवान की भक्ति से भरे है उसका यहाँ पर वर्णन है, इनके चरित्र इतिहासों का, उसे ईशान कथा कहते हैं। और नवम स्कंध में सूर्य वंश और चंद्र वंश के पवित्र राजाओं का वर्णन है, 24 अध्याय है इसमें, जिसमें 13 अध्याय में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन और 11 अध्याय में चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन। तो प्रारंभ में हम लोगों के लिए इतना जानकारी आवश्यक होना चाहिए कि इसे महापुराण क्यों कहते हैं, तो 10 लक्षणों में कौन से लक्षण के अंतर्गत पुराण आता है, ये नवम स्कंध आता है, और इसमें किस मुख्य रूप में कितने अध्यायों में क्या वर्णन। तो ये सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों पवित्र वंश में जो पवित्र राजा है उनके चरित्र दिए गए हैं 24 अध्यायों में। वर्तमान प्रसंग जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, जो 8वें स्कंद के अंतिम में राजा सत्यव्रत जो द्रविड़ देश के थे, भगवान की कृपा से वो इस वैवस्वत मनु बने, जो अभी वर्तमान मनमंत्र चल रहा है, विवस्वान के पुत्र था वैवस्वत। और प्रसंग के अंतर्गत आप आगे सुने होंगे कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रागट हुआ, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि ऐसे 10 ऋषि प्रकट हुए, लेकिन उसमें एक मरीचि जिसको तक्ष भी कहा जाता है, जिनका शरीर अति तेजोमय तेजस्वी था। मरीचि का अर्थ होता है किरण, रे, प्रकाशित ज्योति, मरीचि का। और उसके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप का दाक्षायण्य था, अदिति से विवाह हुआ, ऐसे 17 कन्या से विवाह हुआ था दक्ष की, लेकिन उसमें मुख्य थे अदिति, और उससे 12 आदित्य हुए जिसमें प्रथम थे विवस्वान, ऐसा माना जाता है 12 पुत्रों में विवस्वान। और उसी विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, और श्राद्धदेव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा, तो श्रद्धा और श्राद्ध दे जो ये विवस्वान अर्थात सूर्य वंश के वंशधर मनोबल है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गीता के श्रोता है प्रवर्तक है हम दिवस भगवान कहते हैं इन विवस्वते योग भगवान मनोविश्वा विवस्वान मनोवेता तो ये गीता भी इनको पूरा सिद्धांत या स्पष्ट रूप में परंपरा से पितृ परंपरा से प्राप्त है जिस वंश के राजाओं का चरित्र हम सुनने जा रहे हैं। विशेषता यह है कि राजाओं की कि विलक्षण चरित्र है अलौकिक चरित्र है जो साधारण जनता या मनुष्य या देवताओं में भी इस प्रकार का चरित्र संभव नहीं ऐसे चरित्र है। कभी कभी तो वैष्णव समाज में या आधुनिक युग के इस वर्तमान समय में इनको सुनाने में भी खतरा हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है अभी इसी चलते में आया कि स्त्री पुरुष हो गए उसी शरीर में लीला जो है वो सिद्धिम नाम का पुरुष हो गए इस अध्याय का बड़ा विलक्षण चरित्र है। सूर्यवंश के अंतर्गत ये मनो और श्रद्धा से अर्थात श्राद्धदेव मनो और श्रद्धा से जो पुत्री हुई लीला इसका वर्णन इस श्लोक में है आगे चलते वो पुरुष हो जाएगा गुरु वशिष्ठ इनको पुरुष कर देंगे। अभी आज कल किसी को कहा जाए कि स्त्री जन्म ली थी उसको मंत्र से पुरुष कर ली तो बोले क्या फेंक रहे हो और इतना में अटक जाए तो कोई बात नहीं फिर कहते हैं कि वही पुरुष जो वशिष्ठ के मंत्र विद्या से पुरुष बने वो फिर स्त्री बन गए और फिर स्त्री बन गए वो भी चलेगा तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया एक महीना स्त्री रहोगे एक महीना पुरुष रहोगे लो तो उठ के चला ही जाएगा दूसरा ये क्योंकि ये चरित्र ही ऐसे आगे वर्णन है कि पुत्र को जहर पिला दिया गया बाहु को तो जो पुत्र का सगर वहां पर जहर में कर पा रहा है अरे जहर से मरा तो नहीं राजा भी नहीं मरा अंदर पुत्र भी नहीं मरा और जहर लेके वो बाहर अभी अब तो सीधा ही कहने का अभी बस हो गया अभी बहुत लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमारे इन सनातन शास्त्रों पर थोड़ी बहुत हृदय में श्रद्धा या विश्वास हम लोगों का उदय प्रकट हुआ है गुरु वैष्णव के पास है ये बड़ा सौभाग्य है नहीं तो मुश्किल है आज के युग में बहुत बहुत की हुई साधना और वैष्णव की अनुग्रह अनुकंपा का ही फल होता है कि शास्त्र में और गुरु वैष्णव में श्रद्धा होता है। भगवान को प्राप्त करने का प्रथम साधन प्रभु गोस्वामी इसी को रखा है श्रद्धा नवस्तर के अंतर्गत इसीलिए और यहाँ पर श्रद्धा और श्राद्ध का ही चरित्र है श्राद्धदेव मनु और श्रद्धा उनकी पत्नी। तो आइए भागवत में प्रवेश करते हैं इस प्रसंग में ध्यान से हम आगे बढ़ रहे हैं कि श्राद्धदेव मनु और उसको 10 पुत्र हुए जिसमें ईश्वर को नृंग आदि प्रधान थे और उसके पूर्व जब ईश्वर नृंग आदि राजा जो नहीं हुए थे उसके पूर्व बड़े दुखी रहते थे मनु महाराज और श्रद्धा उनकी पत्नी भी और सही भी है गृहस्थ जीवन की शोभा पुत्र से है और उसमें भी जो राजाओं के चरित्र है गिरिधारी सुभद्रा की जाया उसमें भी जो राजाओं के चरित्र है उसमें तो विशेष क्योंकि पूरे राजवंश का पालन करना होता है आगे चलकर राजगद्दी वंश का तो राजाओं का सिंहासन रिक्त न रहे खाली न रहे उसके लिए कोई सुंदर सुशील राजकुमार जो प्रजा का निर्वाह कर सके हमारे वंश को आगे बढ़ा सके ऐसी मनोवांछा अभिलाषा मनोकामना राजाओं के जीवन में रहती है ये स्वाभाविक है समझा जा सकता है। कोई कोई राजा हुए हैं हमारे जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले इंद्रधनु जैसे जिन्होंने जगन्नाथ से जो मांगा है कि आप इतनी कृपा करिए कि हमें कोई संतान न दे सुने होंगे जगन्नाथ चरित्र क्यों क्योंकि कोई आगे चलकर ये ऐलान न करे कि हमारे या हमारे पूर्व प्रकट किए इंद्रधनु नाम के राजा जो जगन्नाथ जी के चरित्र में सुने होंगे तो मानते हैं ना कि हमको कोई संतान नहीं वो एक अनन्य भक्ति का परितोषक है। तथापि ये राजाओं के चरित्र में भी इस तरह पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा होना ये कोई निंदनीय है नहीं समझना चाहिए हम भक्तों को क्योंकि ये सब भक्त है और भक्त के जीवन में जो भी घटित होता है भगवत कृपा या भगवत इच्छा का ही तो फल होता है ना। ये तो आगे चलकर बड़े वैष्णव भक्त राजा बनने वाले हैं। तो प्रश्न को अपनी बुद्धि से नहीं, आचार्यों की टीका तात्पर्य से समझना चाहिए हम भक्तों को। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं चाहते इसलिए महान है, ये चाहते है तो कम है। अपने अपने स्थान पर दोनों सही है, और आदर जिसको भी भक्त अपना मान सकते हैं वो अलग बात है। तो दोनों दुखी थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से निवेदन करके मित्र और वरुण का एक यज्ञ प्रारंभ किया, जो आप सब भक्त सुन चुके हैं। और इससे संदेश यह है सूर्य वंश के राजाओं के चरित्र से कि किसी भी नव दंपति या गृहस्थ, जब गृहस्थ में प्रवेश करता है आश्रम में, तो उनका मुख्य उद्देश्य भोग नहीं, भक्ति होता है। गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं। और इसीलिए यहाँ पर वर्णन है कि तपस्या की जाती थी उनके द्वारा। मनु महाराज ने भी बहुत तपस्या की थी, रामायण में भी इसका वर्णन है संक्षेप में। कुलवती जब राम वंश का वर्णन किया गया है तो वहां पर, और जब पुत्र काम में कुछ हो तब भी वैष्णव गुरु से निवेदन करके और उनकी बताई हुई यज्ञ साधना आदि के द्वारा ही। ऐसा नहीं कि कोई भोग क्रिया हो रही है और उसका उद्देश्य केवल संसार है, सीधा स्पष्ट निवेदन किया। आप राम अवतार में सुने होंगे, दशरथ जी सीधा निवेदन किए वशिष्ठ जी से कि हमारे ही दुख के कोई पुत्र हो जाए तो हमारे क्या दिखाते। यहाँ पर भी वशिष्ठ और यज्ञ और गुरु लोग क्या कराते थे, यज्ञ कराते, क्योंकि यज्ञ से जो संतान होगी वो तेजस्वी होती है, चमत्कार उसमें कुछ ना कुछ होता है। भगवत यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है, उनके द्वारा की दिया हुआ कुछ फल भी तो यज्ञ का ही फल माना जाता है, जो शुद्ध ही होता है लगभग प्राय। और उसमें भी शुद्ध आचार्यों से और सही तरीके से हो तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं रहता। तो किया और ततस्तो मनोपत्ते होता सम याचत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, वो जो श्रद्धा जो थी, जो यज्ञ में पति पत्नी दोनों बैठ गए और यज्ञ में चार होते हैं, होता द्वरी ब्रह्मा आदि जो यज्ञ कराने, तो होता जो वो है जो यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, और जो अध्वर्य नाम के ऋतविज होते हैं वो बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और होता का काम है जो घी आदि हो घृत आदि उसको हवन कुंड में अर्पण करना और यजमानों को कराना। तो जो होता था जो मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, तो पत्नी होता सब याचक सम्यक रूपेण याचना की, अर्थात स्त्रियों को आप देखे हम ऐसे अपने सारे का पगो करके प्रार्थना करती, याचना करती है। सम्यक से ये तात्पर्य है हमारे आचार्य का कि बड़ा विनम्र भाव से और आंचल पहराते हुए। मनु महाराज नहीं थे यज्ञ में भी, यज्ञ कई दिन तक चलता था और उसमें भी रात्रि की बेला में संध्या के बाद यज्ञ शांत हो जाता था, उसके बाद सुबह वही से प्रारंभ किया जाता था। और कभी कभी लंबा यज्ञ होने के कारण बीच में भी विशेष दिया जाता था, इंटर दिया जाता था, ऐसे होता है यज्ञ में, आप देखे सुने होंगे पढ़े होंगे। तो मनु महाराज को पता न था और उसी अवकाश निकाल समय निकाल कर ये पत्नी श्रद्धा होता है, होता का नाम नहीं दिया गया कि कौन ऋषि थे टीकाओं में भी, लेकिन जो होता का कार्य कर रहे थे उनको याचना की। क्या याचना की, दुहित्र वर्तम पाते हे ब्राह्मण देवता, ये यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए हो रहा है, संतान प्राप्ति के लिए हो रहा है, हम और हमारे पति दोनों संतान चाहते हैं, लेकिन हमारी विशेष इच्छा यह है कि पुत्री होनी चाहिए। आप ऐसा मंत्र पढ़िए कि यज्ञ के फल स्वरूप हमें क्या हो जाए, दुहित्री डॉटर पुत्री हो जाए। प्रणिपत्य प्रयोग होता और दूध पीकर यज्ञ कर दीजिए, केवल जब तक यज्ञ चलेगा तब तक केवल दूध आहार, दूध सात्विक माना जाता है और यज्ञ के अनुकूल भी शरीर को रखता है जब लंबे समय तक करना होता है। तो केवल दूध पीकर जो यज्ञ कर रही थी, प्रणय प्रत्यय प्रणाम करके, क्योंकि वो होता देख रहे थे कि इनकी साधना जो है वो है। क्योंकि देखो एक मैसेज है इसमें कि हम किसी भी वस्तु का फल प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो साधना की आवश्यकता होती है कि नहीं। अभी देखो हमें जरा सुन रहे थे वैष्णव से कि हम लोग श्रवण करते हैं भागवत या वेद, और भागवत या वेद का फल तो कृष्ण को समझना और उनसे प्रीति बढ़ाना, यही है सार रूप में। तो ये करते हुए भी कितना हम सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, फिर भी हमें जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए या जो वैराग्य होना चाहिए संसार नहीं हो रहा, जितनी मात्रा में होना चाहिए नहीं हो रहा। कारण क्या है? और हमारा नहीं, आप पूरे समाज का देखिए, गांव गांव में, हमारे गुजरात में तो और अन्य जगह कितना भगवत होता है ना, देखते ही रहते हो, टीवी में चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? और श्रोता वक्ता दोनों लगे हुए हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ाती होनी चाहिए भगवान के प्रति, और संसार के विषय भोगों में वैराग्य होना चाहिए। वो नहीं दिख रहा, कथाएं तो हो रही है, भागवत हो रहा है, लेकिन फल जो होना चाहिए संसार वैराग्य और भगवत प्रीति, उसमें क्या कहां कमी पड़ रही है? बस यही साधना है, क्योंकि वेदांत अधिकारी वह है जो अपने सर्विस अपने हृदय से विषयों के प्रति पूर्ण लोकेशना पुत्रेशना या वितेशना जो भी ये सारे कलमश है, उनसे जिनका हृदय मुक्त है वो सीधा अधिकारी। और उसके बाद गुरु के निर्देशन में जो साधना करता है वो फल को पा जाता है। अभी साधना करते नहीं और भोगों के प्रति कोई वैराग्य नहीं, ऐसा ही वक्ता हो और श्रोता तो उनसे भी बड़े चढ़े हो, तो कहां फल है? खुद कोई साधन जीवन में कोई आचरण नहीं और ना कोई विषय से वैराग्य, ऐसे वक्ता भरे है और श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कुछ सुन ले, कुछ महाराज से आशीर्वाद ले, तो हमारा ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ऐसी साथ कुछ होगा नहीं। और उसके बाद पता हो जाने के बाद भी साधना तो होती नहीं, हो गया बस हमने सुन लिया, मतलब बात कोई क्या प्राप्त ही कर ली, यही मूढ़ भाव में रहने वाले। तो बिना साधना की संपत्ति के हम वेदांत श्रवण के अधिकारी ही नहीं होते, तब फल की तो फिर कहां प्राप्ति होगी? यहां पर ये ऋत्री स्त्री पर उनकी याचना पर पिघल गए और उनकी याचना पूरी करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये राजकुमार राज रानी होते हुए भी इतना व्रत कर रही है, इतना तप कर रही है कि केवल दूध पीकर और यज्ञ में बैठी हुई है। और ऐसे स्त्रियों की प्रार्थना पर कई लोग पिघल ही जाते हैं, ये स्वाभाविक है संसार का नहीं है, और उसमें भी जब व्रत तप करके करे तब तो क्या कहेंगे। लेकिन ये अलग विषय है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ संदेश हम साधकों के लिए है कि अगर हम साधना सही करें गुरु वैष्णव तो हम उनकी कृपा के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं, है ना, पिघलते हैं आचार्य। लेकिन हम उनकी कोई आज्ञा का पालन ही ना करें, कोई साधना ही ना करें और फिर कृपा करो करते रहे तो कहां कृपा है? तो देखेंगे ना कुछ करता है नहीं, केवल बस गलती अपराध ही करता है और जब मिले तब प्रणाम और कृपा मांगता है, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। साधना की संपत्ति वाला साधक आशीर्वाद या कृपा का भजन पात्र बन जाता है। इसलिए से ये इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, कई छुपे होते हैं जो आसन तक गए। और फिर क्या हुआ? प्रेषिता अध्वर्यु होता, जब अध्वर्य ने कहा कि ठीक है अब यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, ऐसी प्रार्थना हो गई पत्नी के द्वारा श्रद्धा के द्वारा, तब जब होता को आहुति देने का अवसर आया उस प्रसंग के अंदर पुत्र के लिए, तो उन्हें वशत ऐसे बोलना होता है मंत्र के आगे क्लीम दर्शन बीज मंत्र जो लगते हैं उसका निवेदन मंत्र उच्चार करके पुत्री की पूरी जो मंत्रावली थी वही वशत उनका करके प्रदान कर दी और समाहितम अच्छे रूप में मंत्र बोले गए और अच्छे रूपी के द्वारा तो उस हवि डाला गया यज्ञ में आहुति वशत उनका मंत्र बोलकर। तो तब वर्णन है कि भोतुस्तद व्यभिचारेण कन्येलानां साधवत्। सुखदेव जी कहते हैं कि होता के द्वारा इस तरह वशत मंत्र कार करके और पुत्री की जो प्रार्थना पत्नी ने की थी राजा ने नहीं की थी, श्राद्धदेव को पता भी नहीं है, इस तरह का हो गया और आहुति दी गई तो उस फल जो आया कन्या रूप में वो हिला नाम की कन्या समभवत अभवत मतलब प्राप्त हुई प्रकट हुई और इसका नाम था इला। इला शब्द से हमारे वंशीधर टीका में यही लिखते हैं कि भाषा सरस्वती वाणी जिसकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो अर्थात मधुर भाषिणी सत्य भाषिणी या पवित्र वाचा जिनकी हो उसको इला कहते हैं। इलाज जो शब्द है उसका कई स्त्रियों के नाम होते हैं, तो संक्षेप में इतना ही दिया है कि सरस्वती जिसके वाणी पर विराजमान हो उसको इला संबोधन किया जाता है। इला नाम की कन्या अभवत। अब मनोमाला को जो पता चला कि हमारे यहाँ संतान हुए तो परम प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमारा यज्ञ हम किए थे जिस कारण वो यज्ञ सार्थक हो गया, तो जन्म संतान जन्म का समाचार सुनकर मनु महाराज परम प्रसन्न हुए। लेकिन जब देखे कि कन्या है न अति तुष्ट मना, तब वे तुष्ट मन से उदास हो गए। ऐसे बाहर से हर चीज जहां हमको संतान हुआ है तो हमारा कार्य सार्थक हो गया, हमारा गुरु का किया हुआ यज्ञ सफल हो गया, मन में आनंदित होते हुए जब समाचार पूर्ण रूप से ध्यान किए तो कन्या है आजकल के सभी पिताओं का प्रॉब्लम रहता है। कन्या के जन्म के सुनने पर प्रसन्नता नहीं होती है, ये परंपरा से आ रहा है कि पता नहीं शायद यहाँ पर भी मनु महाराज कन्या का जन्म सुनकर प्रसन्न है, क्योंकि हाँ पिता चाह रहे कि पुत्र हो तो हमारा वंश आगे बढ़ाए और राज संभाले, उसके लिए किया गया था। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारी पत्नी ने इस तरह निवेदन करके मंत्रों में ये करा दिया। इसीलिए एक शिक्षा यह भी मिलती है कि जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करें चाहे छोटा मोटा बड़ा या भगवान, तो गृहस्थ लोगों को इस समस्या से बचने के लिए पत्नी से परामर्श कर ही नहीं। तो ये महाराज महाराज आइए पधारिए, प्रभु जी घर में निमंत्रण देता है और वे बेचारे साधु जाते हैं तो महारानी का मोर कुछ और ही होता है। तो यज्ञ का फल तो बाद में रहा, अपराध ही पाद में। इसलिए निमंत्रण आमंत्रण देने से पूर्व या यज्ञ अनुसार संवाद कर लेना चाहिए कैसे करेंगे, उनकी राजी में राजी हो तो आशीर्वाद इतना मिलना उतना मिले, अपराध तो न बने कम से परामर्श करके करते तो दोनों का ठीक हो जाता ना कि नहीं। और ऐसे इतिहास प्रमाण है हमारे इसी में आगे आएगा नव स्कंद में परशुराम चरित्र। परशुराम भगवान प्रकट हुए तो वो गादी नाम के राजा की पत्नी थी और उसकी पुत्री थी सत्यवती, और सत्यवती का लग्न हुआ था ऋचिक ऋषि, और ऋचिक ऋषि और सत्यवती दोनों कुटिया में भजन कर रहे थे। उन्होंने भी कामना की हमको पुत्र हो जाए, ऋचिक ने कहा चलो हम यज्ञ करा देते हैं, और यज्ञ में मंत्र उच्चार करके एक हवि नाम क्या बोलते उसको खीर एक पात्र निकला जिसमें खीर भरा और कहा कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं, आप इसको पी लीजिएगा, ये पीने से आपको पुत्र हो जाएगा। उसी समय उनकी माता आई हुई और गड़बड़ हो गई। माता ने कहा बेटी से तू देखो तू एक ही मेरी पुत्री थी और तू भी यहाँ आ गई, अभी हम तो खाली तो क्या है ये। बोले हमारे पति ने हमारे लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ फल प्रदान किया। अरे हमारे जमाई में इतना शक्ति है कि उसके मंत्र से जो उत्पन्न हो जाए उसको पीने से पुत्र हो जाता है, उसको बोलो ना कि हमारे लिए भी एक पात्र निकाल। अरे उसमें क्या है माता, मैं बोल दूंगी। और बोला पति देव से कि देखो हमारी माता जी आई है, आपकी हमारी माँ हो लोक के अनुसार तो आपकी भी माँ हुई, मदर इन लॉ कानूनी माता है ये, आप उसको मना नहीं कर सकते वो तो माता है लेकिन ये भी माता ही है तो इनकी बात आपको भी रखनी चाहिए। तो बेचारे ऋषि ने दूसरा मंत्र पढ़ के फिर यज्ञ निकाला था, लेकिन फिर स्नान करने गए अपना अपना पीने को कहा, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल बुद्धि तो आप सब वर्णन नहीं कर सकते कैसे क्या कर देती है। प्रिया चरित्रम देवान जानंदी को तो मनुष्य अचानक कर देवता भी नहीं समझ सके तो मनुष्य क्या चीज है कि उसको समझ लेगा क्या करे तब। और इन्होंने कहा कि बेटे एक काम करो, उसको मन में डाउट हुआ कि ये ऋचिक है ना हमारा जमा है, वो यज्ञ फल उसको बोला और ये यज्ञ फल हमको पीने को बोला, लगभग मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा बल है, इसका पुत्र बड़ा अच्छा होगा, हमारा ठीक नहीं होगा। इसलिए कहा बेटी तुम्हारा जो पात्र है हमको दे दो, हमारा तुम पे जाओ। वो बेचारी सरल दे सकते हो तो माता कोई बात नहीं आप हमारा पी लिया। आकर प्रतिदेव ने पूछा पी लिया, बोले पी लिया, लेकिन एक बात थी माता जी को मेरा दे दिया ऋचिक माता पर बात। अरे तुमको दोनों खीर की सबसे काजू बदाम सही था ऐसा देख लेने की पहले कभी कभी खीर में भी भगत लोग देख के गया था ऐसा तो कोई था नहीं, दोनों मैंने ही यज्ञ किया था, दोनों को फल हमने निकाला, आप क्यों ऐसा कर दे। बोले अभी माता होगी शंकर गड़बड़ी हुई कि तुम ब्राह्मण हो ना इसलिए इसलिए मैं ब्राह्मण मंत्र पढ़ा था, इसलिए ब्राह्मण पुत्र होगा। और तुम्हारी माँ गांधी की पत्नी है, वो क्षत्रियानी है, तो उनके यहाँ मैं क्षत्रिय पुरुष हो, ऐसा मंत्र जपा था। अभी तुम उल्टा मिले, तुम्हारे यहाँ क्षत्रिय जन्म लेगा और तुम्हारे यहाँ भिन्न मन वाला ब्राह्मण आएगा, भिक्षण भी करता रहे, राजनी करेगा वो। तो भारी दुखी हो गए इस वक्त, डॉक्टर ने क्या कर दिया। फिर प्रार्थना की जमाई राजा से, आप इतना कर सकते हो तो इसको भी कुछ तो कर ही सकते हो, बोले एक पीढ़ी पीछे डाल सकता हूँ, तो हमारा पुत्र अभी जन्मदग्नि होगा और जो पिया है ना तुमने वो मंत्र, वो फल विफल तो जाएगा नहीं, लेकिन उसको डिले कर सकता हूँ, थोड़ा एक पीढ़ी नीचे डाल सकता है। और वही जमदग्नि के पुत्र जो ब्राह्मण होते हैं भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण के लिए तो क्षत्रिय को क्या कर दिया आप सब जानते, परशुराम क्षत्रिय रमय जगत क्षत्रिय कांपते थे उनका नाम सुनते, ऐसा ब्राह्मण हो क्योंकि मंत्र ही पढ़ा गया था। और उधर विश्वामित्र हुए जो क्षत्रिय थे, लेकिन क्या हो गए द्रौपदी गांधी के पुत्र, गांधी तो नहीं विश्वामित्र हुए, लेकिन वो कोई राजनीति किए थोड़ा टाइम पूर्ण रहा, लेकिन वही मंत्र काम कर गया। तो ये प्रेरणा हम लोगों के लिए वेदों से कथाओं से मिलता है, चरित्र जानने मिलता है कि कौन क्या कर सकता है स्त्री और क्या फल आता है इनका। तो ये यज्ञ अनुष्ठान और उसमें किए गए जो भी उद्देश्य, उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब कराने वाले ब्राह्मण शुद्ध हो, पवित्र हो, और करने वाले यजमान वो शुभ संकल्प रत या साधना रत हो, तभी इनका पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए कलयुग में सारा बातें मान्य नहीं रखता, आगे के तात्पर्य जब कल श्लोक आएगा प्रभुपाद सीधा कहेंगे कि कैसे भी और कैसे वो कुछ भी किया जाए और आप अच्छा ही फल चाहते हो तो एक ही यज्ञ करना है और संगीत करना, जिसमें किस भाव से उस भाव से जो भी कोई गड़बड़ करे वो करे, कोई चिंता ही नहीं। फल क्या आएगा, विष्णु प्रेमी आएगा, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा हरे
हरे,
कोई चिंता नहीं, पत्नी साथ दे या ना दे इस यज्ञ में, इस यज्ञ में दूसरा ब्राह्मण को ध्यान करे कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण और स्वतंत्र यज्ञ है, जो त्रुटि रहने पर भी फल देता है, रिएक्शन फल तो देता ही नहीं। ऐसा नहीं भगवत अधूरा मंत्र बोल दिया या खाली कृष्ण हरे कृष्ण बोल दिया तो कम फल देगा या कुछ विचार ये करके ये फल देगा, नहीं। कैसे वो किया जाए, कोई भी करे कहीं भी करे, बिना खर्च वाला बिना किसी का सहारे की यज्ञ है वो, यही है संकीर्त करिए, जिसमें कोई चिंता ही नहीं। कलयुग का ये सार्थक यज्ञ है, कलयुग के जीव सब त्रुटिपूर्ण है ना, दोष ग्रह विचार उपाधि के द्रौपदी कर भरे हुए, और ब्राह्मणों में भी कोई दम तो रहा नहीं है, आज परान में न जीवा दर्दा, दूसरों का खा खा कर जीव जल गई और दूसरों का ले लेकर हाथ भी दो, पराई स्त्रियों को नजर डालते डालते देखते देखते मन भी तो वासना कामना से भर गया है। ऐसे ब्राह्मणों से न श्राप मिलेगा, ना आशीर्वाद मिलेगा, ना ऐसे कोई साधना सार्थक होगी, कुछ नहीं होगा। करने के लिए करते रहो लेकिन फल नहीं होगा, जहाँ भक्ति पवित्रता है ऐसे। देखिए ना भागवत ब्राह्मणों का चरित्र, तक्षक सांप काटेगा कौन बोल दिया, शमित के पुत्र श्रीजी ने, उन्होंने देखा नहीं था कौन राजा था, कौशिकी नदी पर स्नान कर रहा था, बाकी पदम सुंदर पढ़ते हो तो उसको मित्रों के द्वारा मैसेज मिला कि तुम्हारे पुत्र पिता के गले में सांप डाल दिया, वो मरा हुआ नहीं दिया सांप डाल दिया, सीधा कौशिकी का जल उठाया और देखिए ब्राह्मण अंजलि देते हुआ कहा कि तक्षक सप्तमी अग्नि, सात दिन के बाद जो भी होगा जो भी रहेगा सात दिन में हमारा तक्षक नाग उसको काटेगा, वो मर जाएगा। अरे तक्षक नाग के साथ इनका कोई फ्रेंडशिप नहीं करती, मैं तो मैसेज मोबाइल गया था तक्षक में सात दिन का बोलता हूँ आप जाएंगे कि मित्र कालिया को बोलता हूँ, आपको टाइम है कि नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तक्षक कहाँ रहता है कौन है मतलब नहीं है, वो दिया तक्षक जाएगा तो तक्षक को जाना पड़ेगा, है ना। हम लोग तो आगे मैसेज करके कह रहे थे प्रभु जी आप करेंगे जाएंगे, क्योंकि प्रभु जी नहीं जाएंगे हमारे हमारा ऐसा है, लेकिन देखिए वह भागवत से हम प्रसंग प्रसंग है ना, लेकिन प्रभाव देखिए उनका, बोल दिया तक्षक काटेगा तो तक्षक को पूछने की जरूरत नहीं, और तक्षक कहाँ है वो पहले जानकारी कर लेगी, तब तक सात दिन तक वो जिएगा कि नहीं। ब्राह्मण है बोल दिया तो ब्रह्म ब्राह्मण का मुख से निकला हुआ वाक्य प्रभुति को पूरा करना, क्यों, क्योंकि उनकी साधना उनकी तपस्या है, और कलयुग में सब भोग भोगी हो गए हैं, साधना तपस्या से युक्त हो चुके, इसीलिए ना आशीर्वाद काम करता है ना श्राप काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है चाहे गुरु वशिष्ठ यज्ञ करा रहे हैं या उसमें होता है या ढोलू जो भी लगे है अपने आप में इतने पवित्र है शुद्ध है और मंत्र उच्चार भी सही होने के कारण यजमानों की भी भावना और साधना सही होने के कारण अलग अलग प्राप्त होता है। तो कन्या लीला हो गई और राजा मनु उनसे प्रसन्न नहीं हो। ये श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक का जी भी अपने तात्पर्य में कुछ नहीं लिखे और दो लाइन लिखे हैं कि अधिक संतुष्ट पुत्री के जन्म को सुनकर राजा मनु नहीं हुए। ऐसे अंदर से प्रसन्न थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। पुत्री हो गई क्या करे, अब क्या करेंगे, आगे वर्णन आएगा कि वशिष्ठ से प्रार्थना करिए ऐसा कैसे हो गया, हम तो पुत्र के लिए आप पहले बोले थे और ये पुत्र कैसे हो गए। फिर वशिष्ठ जी ने सब जानकारी की तो पता चला कि महाराज ये आपने पत्नी का किया हुआ सब कार्य है, आपको पता नहीं, हमने प्रार्थना की थी, ब्राह्मण उसकी बात में आ गया, अब क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हो क्यों नहीं सकता, आप ब्रह्मा जी के पुत्र है, सूर्य वंश के गुरु गुरु है, वेदांत वेदांत के सभी प्रकार के विद्वान है और मंत्र वेद आपके अनुगति में है, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारा इच्छा पूरा करिए, हमको पुत्र होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कृपा करके इसी हिला को पुत्र बना दिया, जो पुत्री रूप में चिन्ह लेकर आई थी उसको पुत्र बना दिया। ये है गुरु गुरु कितने समर्थ, पुत्री को पुत्र बना, पुत्री को पुत्र बना देंगे तो आगे बना देंगे, बहुत सुंदर चरित्र है, कथा है हम भक्तों के लिए। और इसका सार ये है कि ये भगवत भक्त राजा है और इसी के कारण इसका चरित्र जो सुनेगा उसकी कर्म वासना, जो कर्म के कारण वो फल भोगने वाला है या वासना है वो चली जाती है। हमारे शिखर स्वामी ने इस गौरवी टीका को चालू करते हुए लिखा है कि ये सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं के इतिहास में इतनी शक्ति है कि अगर कोई इसको श्रद्धा से सुनता है तो उनका मनोवासना या कर्म वासना शांत हो जाती है। इसलिए श्रद्धा से इन चरित्रों को सुनना चाहिए। इसी पर मैं भागवत को समाप्त करके 5 मिनट में हमारे आज बहुत ही पवित्र आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। आज माघ पूर्णिमा, राजा कृष्णदत्त और भक्तिमती सहधर्मिणी उनकी भार्या नारायणी देवी, लगभग चेतन महाप्रभु के कुछ ही समय बाद 1531-32 माघ पूर्णिमा और गोधुली केला में आज के दिन खेतोरी गांव में, खेतोरी गांव जो है उसमें जन्म हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर का। और नरोत्तम दास ठाकुर के जो साधना ये चरित्र का संक्षेप में हम प्राप्त है कि हमारे गौड़ी आचार्य इतने निर्मल और पवित्र थे, अपना चरित्र न कहते थे न दूसरों को कहने लिखने देते थे दैन्य वश, लेकिन फिर भी कुछ कृपा है कि हमें इनके चरित्र प्राप्त है, उसको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों को। मूल रूप में यह है कि कोई असाधारण जीव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है और उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त किए हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर। जब कनाई नटशाला में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सभी भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे तो वहां से उत्तर की ओर जहाँ पर खेतुरी गांव है उसकी ओर देख कर नरोत्तम 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 चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, पुकारने लगे। तो नित्यानंद प्रभु पूछे कौन है ये, तो चलिए नरोत्तम है कौन, तब कहा कि आप जब पुरी में थे हमारे साथ और पुरी में जब आप कृष्ण प्रेम बहा रहे थे, कृष्ण भक्ति करुणा भक्ति नित्यानंद महाराज, उसको मैंने गांठ में बांध के रखा हुआ है और उसका पात्र है नरोत्तम जो यहाँ प्रगट होगा। पहले हमें प्रगट नहीं हुए, उनके पहले नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम रख रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं और उसको सभी भक्त मंडली को लेकर पद्मावती के तीर पर कुतुबपुर में स्नान चैतन्य महाप्रभु गए वहां और उस पद्मा में स्नान करते हुए चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य पवित्र प्रेम तनु के स्पर्श को पाकर पद्मा परम प्रसन्न चित्त से उछलित होने लगे, क्योंकि वो तो रोमांचकंप हो ही जाएगा महाप्रभु के स्पर्श। पद्मा को नदी ये देवी है ना, उनके स्पर्श से बाढ़ आने लगी, उसमें भी प्रसन्न हो गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कृष्ण प्रेम की जो धरोहर है ये पद्मा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और इस धरोहर को आपको इसलिए रखना है कि एक मेरा पार्षद प्रेमी यहाँ आएगा नरोत्तम उसको तुम ये कृष्ण प्रेम जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा मैंने ग्रहण किया और रखा है तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। एक नरोत्तम नाम का भक्त आएगा उसे तुम ये प्रदान कर देना। पद्मा ने पूछा कि मैं कैसे जानूंगी, मुझमें तो बहुत लोग स्नान करने आते हैं, यही वो व्यक्ति है जिसे मुझे प्रेम देना है, कैसे पता चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब मैं तुम्हें स्नान करने प्रवेश हुआ और तुम्हें जो प्रेम धारा उछलित होने लगी, तुम्हारा रोमांच कंपा होने लगा, ऐसा ही आनंद विकार जब तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए तो समझिए कि यही मेरा वो पार्षद, यही मेरा वो नरोत्तम राम ठाकुर बाल्यकाल से ही सुतीक्ष्ण बुद्धि के तेजस्वी अपने आप में और व्याकरण आदि में पटु अन्नप्राशन संस्कार के समय भी भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास हमारे गौरी ग्रंथों में वर्णन है सर उनके चरित्र के अंतर्गत कि वे इनके पिता कृष्ण प्रसाद से ही अन्नप्राशन किए, वे ऐसा तो कराना चाहते नहीं था, सभी संस्कार उनके पिता ने जब कराए प्राप्त बाल अवस्था में सब भक्ति से भरे थे और सुमेधा इतनी बुद्धि थी कि शास्त्र को कंठस्थ करने लगे, सभी विद्यार्थियों से आगे बढ़ने लगे। 8 वर्ष की आयु में श्याम तनु था उनका वर्ण, श्याम वर्ण का था, सांवर श्याम बादल जैसे। नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न दिया कि नरोत्तम हमारा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ प्रेम धरोहर पद्मा के पास है, तुम्हें वो प्राप्त करना है। और स्वप्न से जागृत होकर सुबह वो गए थे पद्मा के पीठ पर नरोत्तम दास ठाकुर, और जैसे ही जल में प्रवेश किए पद्मा जैसे वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रवेश करने पर अवस्था हुई थी, समझ गए कि यही वो व्यक्ति है जिसे हमने प्रदान किया। और जैसे ही जल में डुबकी लगाई पद्मा के दिव्य जल के स्पर्श से उस प्रेम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रखा हुआ धरोहर प्राप्त करके उनका श्याम वर्ण उज्ज्वल हो गया, चैतन्य महाप्रभु की तरह तप्त कंचन हो गई, एकदम श्याम वर्ण में जब स्नान करने गए और स्नान करके जैसे बाहर निकले तो पूरा शरीर चेंज कलर, पूरा उज्ज्वल शरीर उनका हो गया और कृष्ण प्रेम हृदय में भर गया। ऐसे ही था ही और अब ज्ञान वैराग्य तो अपनी सीमा पर थे, तेजस्विता आदि सदगुण आदि सुमधुर वाणी सब कुछ गुणों से अलंकृत थे, भक्ति होने पर सारे गुण अपने आप आ ही जाते हैं भागवत का वचन में, और इसमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाएगी उस भक्त के विषय में क्या कहेंगे। और कृष्ण प्रेम को पाकर अब तो विरह में महाप्रभु के और चैतन्य राधा कृष्ण के प्रेम विरह में भूलने लगे, देह शुद्धि घर शुद्धि सब देह ये स्मृति विचलित होने लगी और उनका मन विचलित होने लगा, भागने लगा वृंदावन के लिए कृष्ण के लिए, रोते रहते थे दिन भर रात भर और हृदय में इच्छा बहुत थी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के। और प्रेम से जो विरह अवस्था का वर्णन हम शिक्षाष्टकम में या गुरुअष्टकम में आचार्य में सुनते हैं वो सब प्रकट लक्षण होने लगे नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में। और फिर वे वृंदावन की ओर उसी समय बस उसी अवस्था में 9-10-11 वर्ष की आयु में वृंदावन की ओर आगे रूप सनातन और प्रकट हो चुके थे, समाचार सुनकर बड़े दुखी हुए। जीव गोस्वामी उस समय विद्यमान थे वहां पर वृंदावन में और रूप सनातन भी इनको जीव गोस्वामी को मैसेज दिए थे कि नरोत्तम नाम का जो वैष्णव आएगा यही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, आप उन्हें शरण में रखना ध्यान में रखना। और लोकनाथ गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल से नवद्वीप से प्रथम भेजे हुए ब्रज के पार्षद लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों को साथ में भेजा था, वे वहां पर भजन करके और इनकी शरण में ये गए गुरु वंदना जो हम प्रतिदिन गाते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर का दिव्य भाव है अपने गुरु के प्रति लोकनाथ जी के प्रति और क्या शिष्यत्व उन्होंने निभाया, जो भजन गाया है उनके चरित्र में है गुरु मुख पद्म वाक्य या श्री गुरु चरण रति, ये जो बताए गए हैं वेदों के सारे वाक्य है, केवल वाणी का विलास नहीं था नरोत्तम दास ठाकुर, उनके व्यवहार में ये था। और इस चरित्र को आप सभी जानते हैं लोकनाथ जी को दीक्षा ले चुके हम किसी को नहीं बनाए न धनम न जन्म किसी के कामना तो थी नहीं लोकनाथ जी जाते हैं, लेकिन इनकी सेवा इतनी पराकाष्ठा को प्राप्त थी कि उसको वशीभूत कर दिया था, प्रेम के अधीन होकर सभी अन्य आचार्य ने प्रार्थना की जीव गोस्वामी जी को आप दीजिए ये पात्र थी। और क्या सेवा करते थे आप सभी जानते हैं, प्रातः काल उत्तम साफ करने जाते थे, इनको जाते लग्न से पहले निशांत वेला में जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी शौचालय के लिए करने जाते थे, उन जगह को साफ करना, झाड़ू से वहाँ पानी से साफ करना, रास्ता पूरा साफ कर देना, इन निम्न सेवा को प्रतिदिन कोई करता हुआ देखकर गोरखनाथ गोस्वामी की गर्दन पकड़ लिए एक दिन उनको पीछे बैठे और तब दांत में तृण बगैर आंखों से रोते हुए कहे, हम कुछ नहीं चाहते आपसे, बस आप अपने हम की शरण में लिए। जो जो आत्मसमर्पण होना चाहिए उस अवस्था में, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा और केवल बाह्य नहीं हृदय से इस भाव को देखकर लोकनाथ गोस्वामी अपना व्रत तोड़ दिए कि नहीं बनाएंगे किसी को शिष्य को, बनाना पड़ा उसको प्रेम के कारण, इतना समर्पण था गुरु के प्रति। हम लोगों के लिए ये नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र इस मान्य में, इस दीक्षा या सेवा में आदर्श है। सदैव स्मरण करने पर भी शक्ति बढ़ती है वैष्णव की सेवा के प्रति, गुरु की सेवा के प्रति। और हम कुछ भी साधना करें भक्तों, सार तो यही है ना कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और कृष्ण प्रेम प्राप्ति का प्रमाण तो यही है कि उनके प्रेमी से प्रेम करना है। अगर हमारा गुरुजनों के प्रति, वैष्णव के प्रति स्नेह नहीं बढ़ रहा है, आदर नहीं बढ़ रहा है, तो हमारी साधना का सार ही नहीं है, ऐसे देखा जाएगा। सार तो यही है ना, कभी जब नहीं आकर भागवत में कह दिया है कि आप कुछ भी करते हो विग्रह से कुछ भी, लेकिन भगवान सबके हृदय में है और भक्तों के प्रति प्रेम आदर या विश्वास नहीं है, तो की हुई साधना भस्म में हवन की समान है। जानते ना, अग्नि में हवन करते लेकिन राख में हवन करने के तुल्य हो जाएगा। तो सार तो यही है, और किसी वैष्णव से हम कुछ अलग व्यवहार करते हैं तो सीधा भगवान की कृपा के ऊपर प्रभाव करते हैं, यही बात है। क्योंकि भगवान जहाँ कुछ भी लीला करे, प्रकट हो, कृष्ण को कोई पूछे कि आप विश्राम कहाँ करते हैं, रेस्ट कहाँ लेते हैं, तो मां हृदय सदा गोविंद, भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम लेते हैं। और भक्तों को डिस्टर्ब करना मतलब भगवान के विश्राम में ही कलर करना, एक रूप में यही गौण आप पकड़ सकते हो आप। तो भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति बढ़े, स्नेह बढ़े, आदर बढ़े, हम पा गए, पा जाएंगे भगवान को। कुछ त्रुटि भी साधना में नहीं, पा जाएंगे, और साधना ठीक से भी होती जाए, लेकिन अगर स्नेह आदर वैष्णव के प्रति नहीं रहा तब अहंकार होगा और पतन के पूरे चांसेस हो जाएंगे। ये सत्य सिद्धांत है, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर से यह सीखना, भक्ति के उच्च राज्य के अधिकारी पुरुष है लेकिन फिर भी नम्रता देखिए, वैष्णव के अनुगत्य में शरणागत भाव देखिए, और इतना स्पष्ट है इनके भजन प्रार्थना, इनकी प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, और उससे कुछ लिए हुए शुद्ध जो स्थान और देश काल पात्र के अनुसार हमारे गौड़ी आचार्य के द्वारा वैष्णव भजन, जो हम प्रतिदिन कई भजन नरोत्तम दास ठाकुर के गाते सुनते हैं, तो कितना दैन्य है उनके भजनों में, कितना शुद्ध वैष्णव के प्रति भाव है हम देख सकते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के भजन भाव के अंदर। तांदेर चरण से भक्त सनेवास जन्म जन्म है ये नरोत्तम दास ठाकुर की मनोवांछा अभिलाषा है, जन्म जन्म मुझे भक्तों के चरणों में रति मति बनी रहे। तो इन भाव को, इन सेवा भाव को हमें इन आचार्य से ग्रहण करना है, और हमें हमारे अंतर्गत इन सद्गुणों की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना इन नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वैष्णव के चरणों में हम कर सकते हैं। और विशेष रूप में उस समय श्रीनिवास आचार्य एवं श्यामानंद प्रभु जो दुखी कृष्णदास नाम था, गौरीदास पंडित के शिष्य वो भी वहां थे, और उन तीनों के अनुगत तीनों को जीव गोस्वामी ने भगवत सिखाया, वैदिक ज्ञान दिया था। और उनके उनके चरित्र भी अलग अलग है, आप सुने पड़े होंगे, लेकिन इन तीनों को साथ में लेकर रूप सनातन के आदेश से, स्वप्नार आदेश से जीव गोस्वामी ने इन तीनों को बंगाल भेजा, चार बड़ी बड़ी पेटियों में ग्रंथों को भर कर ये प्रचार कर गए बंगाल की ओर। और वन विष्णुपुर बीच में दस्यु द्वारा ये ग्रंथ चोरी हो गए, फिर देववाणी आकाशवाणी हुई श्रीनिवास आचार्य को, तो तुम्हें राजा के पास जाओ मिल जाएंगे, और वहाँ विष्णुपुर का जो राजा था उनको भ्रमरजीत की व्याख्या निवास आचार्य ने बड़ी सुंदर सुनाई, और उनका भक्त शिष्य हो गया, उनके सैनिकों द्वारा पुनः ग्रंथ प्राप्त हुए, उनको लेकर ये बंगाल आए श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। और वहां पर भी वर्णन ब्रज में भी राघव पंडित की गुफा गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा में देखे होंगे, अक्षराकुंड के पास लोठा बाबा के पास राघव गुफा है ना, वहां पर उनके राघव पंडित के साथ उनकी 84 वर्ष की परिक्रमा भी की थी नरोत्तम द्वारा, कई सालों तक ब्रज में रहे, और फिर जीव गोस्वामी के आदेश से प्रचार हेतु हमारे गौड़ीय ग्रंथों को लेकर रूप सनातन के बंगाल पधारे। और बंगाल में खेतोरी गांव में अर्चवी की स्थापना और बड़े बड़े वैष्णव भंडारा उत्सव संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की जो ये परंपरा है उनके तिलक माने जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इतना पवित्र चरित्र है इनका और इनका नाम जो है नरो में उत्तम वास्तव में गुण भी है, वैराग्य भी भरा है और भक्ति भी भरा है और ऐसे भक्त का आविर्भाव है। ये तिथि को सुनना मनाना या उनसे प्रार्थना करना हमारे भक्ति में प्रगति कराता है वृद्धि कराता है और उनका अंतर ध्यान भी विलक्षण है। उनकी पुष्प समाधि प्राप्त करते वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी के समय राधा गोकुलानंद मंदिर में, लेकिन ऐसा भी सुने पड़े हैं हम कि गंगा की धारा की तरह दूध में मिलन हो गया इनका शरीर। ऐसे नहीं कि कोई देह जाके छोड़े या समाधि से लिए, ऐसे भी वर्णन उनका प्राप्त होता है प्रेम विलास में सत्य कितना है आप जानते होंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जो हमारे गीता भागवत या वेदों का सार है जो सरल बंगला में उन्होंने अपने वाणी में रख दिया है, इसको कोई पढ़ेगा सुनेगा गाएगा निश्चित वैष्णव प्रेम प्राप्त करेगा और वैष्णव की कृपा से कृष्ण प्रेम का पात्र बन जाएगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है, हम भक्तों को उनके भजन आज कम से कम गाने सुनने पढ़ने चाहिए और उस भाव को ग्रहण करने का विनम्र और पूर्ण प्रयास करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम।
धन्यवाद आप सभी वैष्णव वृंदावन भागवतम की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वंचन सिंधु के भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।